लैसा नहीं है, अलैका हुदा हूं, आप पर उनकी हिदायत। किन की हिदायत? जो गैर मुस्लिम है आपके जिम्मे, आप कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ऐ नबी आपके जिम्मे इन लोगों की हिदायत नहीं है, जो ईमान नहीं लाए इनको हिदायत देना आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन ये अल्लाह के ऊपर है कि वो जिसको चाहे हिदायत अता फरमाए। थोड़ा सा इसका पहले शान नजूल देख लेते हैं कि ये आयत क्यों नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मुसलमान सहाबा अपने मुशरिक रिश्तेदारों के साथ सलूक करना नापसंद करते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया और ये आयत उतरी। यानी क्या करते थे मुसलमान? देखिए उनके तो रिश्तेदार होते थे जो गैर मुस्लिम होते थे, तो अब वो कहते थे ये हमारे रिश्तेदार मुसलमान ही नहीं है, हम क्यों इनके साथ मतलब इनके ऊपर सदका करें। और फिर ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सदका सिर्फ मुसलमानों को दिया जाए, तो ये आयत उतरी। तो आपने फरमाया कि अब हर साइल को दो, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। तो इसके अंदर इस आयत में जवाब है। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं अक्सर कि क्या हम गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं तो कभी उनकी चैरिटीज मांगती हैं, कभी कोई ऐसी यानी डिजास्टर ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, या कोई यतीम बच्चे हैं उनके लिए, या कोई भूख ऐसी आ जाती है कि जो है जरूरत पड़ती है, तो क्या हम अपना सदका दें इनको कि नहीं दें? हम क्यों दें, ये तो गैर मुस्लिम है। अब गैर मुस्लिम चाहे काफिर मर रहा हो लेकिन हम कहेंगे नहीं तो ये काफिर है ना, तो हमने इसको नहीं देना। बात ये है, इस आयत से भी पता चलता है कि मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ए नबी आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि आप इनको हिदायत दें। क्योंकि देखें मुसलमान क्या सोचते थे कि अगर हम इनके लिए ऊपर सदका नहीं करेंगे, इनके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, तो हो सकता है इस वजह से ये कभी मुसलमान हो जाए। ये भी उनको इस्लाम की तरफ मायल करने के लिए वो चाहते थे ना कि ये थोड़ा मतलब देखो कि हम हमें सदका ही नहीं मिलता क्योंकि हम मुसलमान नहीं, तो वो मुसलमान हो जाए। तो इस वजह से उनकी नीयत ये होती थी, अच्छी नीयत थी, या वो फिर कभी ये कहते थे कि ये तो जब मुसलमान ही नहीं हम क्यों करें। जैसे हम में से बाज लोग जब दीन की तरफ आ जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अच्छा अब वो फलां है, वो तो दीन पे है ही नहीं, वो तो ये करते हैं वो करते हैं, बस उनको तो ना नमाज पढ़ते हैं ना ऐसे करते हैं, तो बस अभी हमने इनको कुछ नहीं देना, या इनके घर में तो यही चलती है, ये तो ऐसे हैं, तो अब हम इनके ऊपर नहीं कुछ स्पेंड करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया आपके ऊपर किसी को हिदायत देना थोड़ी है, अल्लाह है जो हिदायत देने वाला है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी कोशिश की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ईमान ले आए, लेकिन वो नहीं लेकर आए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बास नहीं था कि किसी को हिदायत दे। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में, इसीलिए आप अल्लाह से मांगा करें अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, क्योंकि दिल अल्लाह के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे हिदायत से मोड़ दे। इसलिए हर वक्त डरते रहे, ये कहें रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को मोड़ ना देना, हमारे दिलों को टेढ़े ना कर देना, क्योंकि ये भी कोई बईद नहीं है। कोई अपने आप में इतना अपने आप को नहीं समझे कि हम तो बस हिदायत पे आ गए, अब हमेशा हमने इसी पे रहना, या हम तो बड़े कारनामे कर रहे हैं। नहीं, किसी का भी नहीं पता कि कौन मरते दम तक हिदायत पे रहता है और कौन नहीं। तो इल्तजाएं किया करें, फखर करने की बात नहीं है, इल्तजाएं अल्लाह के सामने रखा करें कि अल्लाह हमारे दिल को टेढ़ा ना कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे या अल्लाह मेरा दिल तेरी दो करीम उंगलियों के दरमियान है। वाकई इंसान का दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, दो करीम उंगलियों, जिधर को चाहे फेर दे, जिधर चाहे फेर दे। चाहे तो किसी का दिल, आज आप किसी को बहुत बुरा समझ रहे हैं, फलां ऐसा है, हमने नहीं उसको कुछ लेना, अल्लाह उसको हिदायत पे मोड़ दे। और चाहे तो हम जो इतने बड़े बने बैठे, अल्लाह हिदायत से, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हिदायत से दिल को टेढ़ा कर दे। अल्लाह के पास में है, ये किसी इंसान के बस में नहीं है, ना किसी को हिदायत देना ना खुद हिदायत पे कायम रहना। अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है, तो आप इस चीज को बीच में मत लाओ कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, और इस बेसिस पे किसी की हेल्प करो। कितनी वुसअत है इस्लाम में, किस कदर हमदर्दी की फिजा है कि इंसानियत से हमदर्दी करो, समंदर जैसा हौसला पैदा करो, ऐसे वसी हो जाओ जैसे समंदर है। समंदर को देखिए परवाह नहीं है, उसका पानी दरियाओं में बहे, बर्फ की सूरत में कहीं पहाड़ों पे जम जाए, या बादलों की सूरत में फिजा में ऊपर उठ के चला जाए, उसको नहीं परवाह, या टनों पानी कहीं चला जाए, वो हर एक को सैराब करता है। समंदर से सभी फायदा उठाते हैं, इसी तरह बादलों की भी मिसाल है, आप बादलों की तरह बन जाए। देखिए बादल जब बरसता है, क्या वो ये देख के बरसता है फला अल्लाह को मानता है मैं इस पे बरसूंगा, और ये नहीं मानता मैंने नहीं इस पे बरसना, कभी ऐसा होता है नहीं। मोमिन ऐसा होता है बादल की तरह, हर एक के ऊपर बरसता है, और जब मेरे अल्लाह ने कह दिया तुम कौन होते हो रोकने वाले सदके को, हाँ हिदायत मेरे पास है, मैं जिसको चाहूं हिदायत दूं, तुम कौन से होते हैं ये फैसले करने वाले, हमने उसको नहीं देना उसको देना, नहीं। वमा तुंफिकुम मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, जो तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए है, जो माल में से तुम खर्च करते हो तुम्हें अपना फायदा है उसमें, तुम्हें इससे क्या। देखिए अब यहाँ पे चार बातें नहीं तीन बातें बताई गई, अगर चौथी अंतुम ला तुज़लमून को भी करते हैं तो चार बन गई, लेकिन अगर वमा तुंफिकु तक रहे तो तीन बातें बन गई। तीन बातें ऐसी अल्लाह ताला ने बयान कर दी कि देखो मुसलमान तुम अपनी मुट्ठी को खोलो गैर मुस्लिम के लिए, जो सवाल करता है, जो जरूरतमंद है, जो मिस्कीन है, जो पिसा हुआ है, उसके लिए अपनी मुट्ठी खोलो। तीन इंसेंटिव दिए, तीन रीजनिंग तीन तरह से दी, देखो तुम तो खर्च करते हो ना अपने लिए, अपने सवाब के लिए, तो सवाब तो तुम्हें मैंने देना है, तुम्हें इससे क्या कि अगला मुसलमान है या नहीं। सुभान अल्लाह, देखे कैसी बात अल्लाह ताला ने, वो देखो इंसान फिर सोचे कि ये अल्लाह ताला किन के लिए वकालत कर रहे हैं, बताएं हैं कि इनको दो, वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, और अल्लाह के साथ शिर्क करना क्या है, जैसे उसको गाली देना, ये वो है जो कहता है मैंने अल्लाह को नहीं मानना, जो उसको मानने से इनकार करता है, ये वो है जो अल्लाह को छोड़ के जाके औरों के आगे सजदे करता है, अल्लाह कहता है इसको भी दो। सुभान अल्लाह, तुम दो, तुमने देना किसके लिए, अपने सवाब के लिए, तुम इसीलिए खर्च करते हो ना, तो दो इनको भी। ये है मुसलमान, ये है मोमिन जो सारी इंसानियत से मोहब्बत करने वाला है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक है अयालुल्लाह है, अल्लाह का कुंबा है सारी मखलूक, इवन आप कुत्ते को पानी पिलाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको अजर मिलता है। हर तार के साथ, एक हदीस है ना, हर तार के साथ, मतलब क्या, हर जानदार के साथ भलाई करो, हर एक जानदार, चाहे वो फूल है पौधा है, चाहे वो कोई जानवर है, कुत्ते जैसा जानवर भी है, भलाई लेकिन करो। तो मोमिन कितनी प्यारी शख्सियत होती है ना, वो नहीं ये देख सकता है कोई तड़प रहा है और हम कहें नहीं मुसलमान, वो तो फिर है, हाँ मुसलमान के आपके पर दो हक हो जाते हैं, एक इंसानियत के नाते और एक दीन के नाते, उनके वो इंसानियत में भी आपके साथ शरीक है और आपके दीन में भी आपके साथ शरीक है, लेकिन ये नहीं है कि अपना हाथ दूसरों से रोक लो। फिर नंबर टू, अल्लाह ताला ने क्या रीजनिंग दी, क्यों खर्च करो, भगवान तो उनसे होना इल्लबते वजिल्ला, और तुम तो खर्च नहीं करते मगर सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रजा मिले, अल्लाह का दीदार मिले, वजिल्लाह अल्लाह का चेहरा है ना, इसे दो माने ले सकते हैं आप, एक ये कि तुम तो अल्लाह के दीदार के लिए खर्च करते हो ना, कि अल्लाह ताला इसलिए मैं देती हूँ कि एक दिन तू जन्नत में मुझे अपना दीदार कराए, मैं इसलिए खर्च करती हूँ, तुम तो ये चाहते हो ना, फिर तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो, और दूसरा ये अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए तुम देते हो ना, कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, हाँ तो फिर तुम दो, फिर अल्लाह ही तुम्हें कह रहा है कि तुम दो इनको, नॉन मुस्लिम्स पे खर्च करो, और वज पे तवज्जो भी आ जाती है कि उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए। तुम तो ये चाहते हो ना, मैं अल्लाह की नजरों में नंबर बना लूं, अल्लाह के आगे नंबर बना लूं अपने, है ना। इंसानों के आगे तो नंबर बनाते रहते हैं। आपका खर्च करने का मकसद क्या होता है? मैं अल्लाह के आगे नंबर बनाऊं, मैं अल्लाह की नजरों में अच्छी हो जाऊं। तो तुम अल्लाह की नजरों में तो अच्छी हो जाओगे जब तुम खर्च करोगे। तुम्हें इससे क्या कि किसको दे रहे हो? वमा तुनफिकु मिन खैरिन युवफ्फा इलैकुम वा अंतुम ला तुज़लमून। और जो भी तुम खर्च करोगे माल में से पूरा पूरा दिया जाएगा तुम्हें। ये थोड़ी है कि अगर गैर मुस्लिम पे खर्च करोगे तो तुम्हें वहां पे नहीं दिया जाएगा, मुसलमान पे खर्च करोगे तो वहां पे ज्यादा दिया जाएगा। नहीं, तुम जिसके लिए खर्च कर रहे हो ना उसने देना है। वो कह रहा है मैं पूरा पूरा दूंगा, तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। कोई जुल्म, जुल्म क्या होगा कि अगर अब पूरा पूरा अजर ना दिया जाए तो वो जुल्म हो गया ना। जुल्म क्या होता है? किसी के हक में कमी करना। तो तुम पे कोई कोई कुछ कमी नहीं की जाएगी, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारा अजर मारा नहीं जाएगा। भला और कौन सा मजहब है जिसमें इस कदर टॉलरेंस है, इस कदर इंसानी हमदर्दी है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि उनके पास एक मेहमान आया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। तो खाना रखा, इससे पहले कि वो खाना शुरू करता उससे पूछा कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो? वो कहता नहीं, मैं तो नहीं मानता अल्लाह को। अल्लाह के जॉब चले जाओ, मैं नहीं तुम्हें खाना खिलाता, चले जाओ यहाँ से। तो वो उठ के चला गया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आ गए। ए इब्राहिम, 40 साल से ये मेरी नाफरमानी कर रहा था, मुझे नहीं मान रहा था, तो मैंने तो इसके ऊपर अपना रिस्क बंद नहीं किया। एक दिन ये तेरे पास आ गया तो तूने कह दिया कि मैं नहीं खिलाता। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े गए, कहा कि वापस आ जाओ। वो कहने लगा क्यों, आप क्यों बुला रहे हो? फरमाया कि तुम्हारे लिए तो वही आ गई। वो इतना हैरान हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया कि अल्लाह ताला इस तरह, वो इतना रहीम है, इतना करीम है। इतने सालों से अल्लाह की नाफरमानी की, इंसान का देखे हौसला बस इतना ही होता है। अल्लाह अपना रिस्क नहीं बंद करता। इंसान के पास एक दिन कोई सवाल ही आ जाए तो वो अपना रिस्क बंद कर देता कि नहीं देता तुझे। और फिर सदका किसके लिए? तो ये आपको पता चल गया कि गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करो। और किसके ऊपर खर्च करो? लिल फकरा, उन फकीरों, यानी फकीर का मतलब ये नहीं कि जो आपके आगे हाथ फैलाता है, मगर वो तंग दस्त। الَّذِينَ عُسِّرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में। घेर लिए गए का मतलब क्या? रोक लिए गए। किसने रोका उनको? फी सबील अल्लाह ने, यानी फी सबील अल्लाह कामों ने उनको रोक लिया। वो कौन से काम होते हैं जो फी सबील अल्लाह काम होते हैं? जाती कोई उनकी मसरूफियात नहीं थी कि वो अपनी कोई सी मसरूफियात में, नहीं, फी सबील अल्लाह काम कौन से हैं? दीन के काम। दीन के कामों ने उनको रोक लिया। किस चीज के से रोक लिया? कमाई करने से। देखिए बास लोग ऐसे हैं ना, कई स्कॉलर्स हो सकते हैं, कई इमाम मस्जिद हो सकते हैं, कई और लोग हो सकते हैं जो रिसर्च वर्क कर रहे हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया और ऐसा वक्फ किया कि अब उनके पास टाइम नहीं कि वो जॉब करें, उनके पास टाइम नहीं है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए उसके लिए टाइम चाहिए ना। तो ये लोग क्या है, या तो ये दीन के लिए टाइम दे सकते हैं, जाहिर है वो भी एक फुल टाइम जॉब है, और या फिर ये बिजनेस कर लें, कमाइयां कर लें। तो अब क्या है, कमाई करने का तो इनके पास वक्त है नहीं, फुल टाइम डेडिकेटेड है दीन के लिए, तो अब इनकी जरूरियात कौन पूरी करेगा? हाँ, तुम पूरी करोगे। तुम लोग जो दुनिया के कमाइयां कर रहे हो, अब तुम्हारे पास दीन का रिसर्च वर्क करने के लिए या दीन के इशाद के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन के और काम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम जॉब्स करते हो, बिजनेस करते हो और काम करते हो। तो अब तुम क्या करो, तुम कॉम्पेंसेट करो इस चीज को। अब इंसान को गिल्ट होती है ना कि अब मैं क्या करूं, देखिए मैं तो अब इतना काम नहीं कर सकती कि कोई किसी जगह जाए वहां पे जाके लेक्चर दे, दूसरी जगह जाए वहां जाके लेक्चर दे, उसके ऊपर खर्चा भी है, सब कुछ है। अब वो उसका, उस बंदे का ये खर्चा कौन उठाएगा? कौन उसके घर को, घर का चूल्हा चलाएगा? तो अब ये इन लोगों का काम है जो दुनिया में कमाइयां कर रहे हैं वो कॉम्पेंसेट करें, उनकी गिल्ट इस तरह दूर हो सकती है, वो खुद तो नहीं कर सकते लेकिन अपने माल से फिर वो इन लोगों के ऊपर स्पेंड करें, ठीक है। ये भी सदका है इन लोगों पे स्पेंड करना जिन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया वह दीन के लिए, समझ आ गई बात। तो फरमाया लिल्फुकरा लदीना अफसरू फी सबिल्लाह, वो फकीर वो तंगदस्त जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में, यानी जिनको अल्लाह के कामों ने रोक लिया हुआ है, अब वो अपनी इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि वो कोई काम धंधा दुनिया का कर सके और अपने घर का चूल्हा चला सके, लेकिन इनकी सिफात है कुछ फोर क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई इनकी। वो फोर क्वालिटीज क्या है? नंबर वन, ला यस्तुतीउन दरबन फिल अर्द, उनके पास इस्तेआत नहीं है कि वो जमीन में दौड़ धूप कर सके, यानी कमाई के लिए खुद निकल सके, जो मैंने अभी आपको बात की कि जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जाहिर है उसमें वक्त चाहिए ना, तो उनके पास इतना टाइम कहाँ है। लेकिन दीन भी फुल आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फुल आपका टाइम मांगता है, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि बस थोड़ी देर के लिए आप सारा दिन जॉब पे बैठे रहे, शाम को आके एक सफा पढ़ लिया, इससे तो नहीं काम होता ना। तो फिर दीन का काम कौन करेगा अगर सारे ही बिजनेस और सारे ही जॉबें शुरू कर दें, कौन करेगा दीन का काम? कुछ लोगों को इस तरफ भी तो डेडिकेट होना चाहिए। तो फिर अब माशरे में क्या होता है, एक सोसाइटी में जो लोग अपने आप को इस तरफ डेडिकेट कर देते उनकी हालत जाहिर है फिर बहुत इकोनॉमिकली उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके पास नहीं इतना होता, कहां से कमाई करेंगे, क्या करेंगे, वो कैसे उनका घर चलेगा। तो फिर लोग उनको बहुत लुक डाउन करते हैं, बहुत हकीर समझते हैं। आप देख ले हमारे माशरे के अंदर क्या इज्जत रह जाती है, कोई एक मस्जिद के इमाम है या कोई एक जो जो लोग भी दीन की तबलीग का काम करते हैं, आलिम है, ये है, उनकी क्या इज्जत रह जाती है, क्योंकि हम माशरे के अंदर जाहिर ही बात है उन फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सब लोग उनको एक हकीर सा समझते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं देते, अपने बराबर का नहीं समझते। तो बाकी लोगों का काम है उनकी अपलिफ्ट के लिए कि बाकी लोग सदका करें उनके ऊपर, ये उनकी तरफ से सदका होगा। इसको अब ये ना समझे कि हमने इनके ऊपर बस खैरात कर दिया, ये तो हमारे टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, हमने तो इनको इनके ऊपर, नो, वो जो काम कर रहे हैं ना वो आपके हिस्से का काम कर रहे हैं, आपको ये काम भी करना चाहिए था लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो समझने आपकी वाली जो जॉब है वो लोग कर रहे हैं, अब आपका काम है उन पे स्पेंड करना, समझे ना। तो उनको इस तरह जलील समझ के, हकीर समझ के कि हम अपने सदके खैरात इनको दे देते हैं, ये बेचारे इस तरह के है ना, चलो इनकी कोई मदद हो जाए। जब हम ऐसा एटीट्यूड करते हैं ना तो इसका मतलब है हम दूसरे को नीचा देख रहे हैं, उनकी अपलिफ्ट करें, उनको ऊपर लेकर आए, ये सोचे हमेशा सदका देते वक्त कि इसकी जरूरत मुझे है। हम पता जब देते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अरे चलो मैंने फलां को दे दिया, चलो उस बेचारी की मदद हो जाएगी। नहीं, मदद की मोहताज तो मैं हूं, इसलिए कि मुझे अजर चाहिए अल्लाह से, इसलिए कि मुझे नेकियां अपनी बढ़ानी है, इसलिए कि अल्लाह के पास जाके मुझे जरूरत होगी इन अमाल की, इसलिए मैं फकीर हूं, समझे। जब आप इस सोच के साथ देंगे ना तो ना आपके अंदर तकब्बुर आएगा, ना आप दूसरों को हकीर समझेंगे, ना दूसरों को नीचा समझेंगे, ना अपना कोई एहसान समझेंगे दूसरे पे, ठीक है। तो ये लोग क्या है, जमीन में देखें ये भाग दौड़ नहीं कर सकते, ये वो दीन का वो काम कर रहे हैं जो सबकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपने कंधों पे बाकी सबकी जिम्मेदारी ली हुई है, तो इनका हम पे एहसान है, वरना हमारे दीन का काम कौन करेगा, ठीक है। तो अब इनको माशरे में ऊपर लेकर आए, सबके बराबर करना चाहिए। आज चूंकि ये बात नहीं है, इसी वजह से देख लिया आपने ये अंजाम हुआ कि आज किसी को कह दें दीन की तालीम लो तो वो क्या करते हैं, जो जो अच्छे होते हैं फाइनेंशियली वो कहते हैं लो अब हम ये तालीम लें, यानी अपने आप को समझते हैं कि हम डाउनग्रेड करते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या है, इनकी कौन, इनके पास कौन से कोई पैसे होते हैं, हम तो हर चीज को माल में तोलते हैं ना, ये उसके बाद क्या है, बस एक हैंड टू माउथ जिंदगी गुजरेगी फिर इसकी, तो कोई भी इस तरफ नहीं जाना चाहता। जिस वक्त इन लोगों को आप ऊपर लेकर आएंगे माशरे में, तो लोग खुशी के साथ फिर दीन के लिए भी अपना वक्त निकालेंगे, कि ऐसा नहीं है कि कोई भूखे मरेंगे, अल्लाह ताला उनके लिए भी फिर इंतजाम कर रहा है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि इनके ऊपर स्पेंड करो, क्योंकि ये नहीं खुद जाके जॉब्स कर सकते। यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तआफुफ, जाहिल जो है ना यानी नावाकिफ, जो जिसको कोई पता ही नहीं है, वो उनको क्या समझता है? अगनिया। यहसबुहुम यानी समझता है उनको, कौन समझता है? जाहिल। एक जाहिल ही वाकई उनको अगनिया समझ सकता है। उसे वो कहता है इनको कौन सी कोई जरूरत है, हमने तो देखा था अच्छे भले कपड़े इसने पहने हुए थे, मैंने उसके कपड़े देख के और उसके बाद सोच लिया कि जो है ये तो इसको कहाँ इतनी वो है, नहीं नहीं इसको नहीं कोई जरूरत। जाहिल उसको दौलतमंद समझता है, मीना ताफ इस वजह से कि वो पाकदामनी इख्तियार किए हुए, इस वजह से कि वो मांगता नहीं है, वो हर एक से कहता नहीं फिरता कि मुझे दो मुझे दो, पीछे नहीं पड़ जाता। तो लोग सोचते हैं कि जो मांगता नहीं है शायद इसको जरूरत ही नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, उनकी खुददारी है, इस वजह से नहीं वो मांगते, इस वजह से नहीं वो हाथ फैलाते। तारीफ हूं भी सीमा हूं, तुम पहचान लोगों उनकी निशानियों से, उनको आपको खुद ही पता चल जाएगा, जब आपको पता होगा कि कहाँ से आता है इनका, क्या इनकी इनकम का सोर्स है, कितने पैसे कहाँ से आते हैं, कितने इनके बच्चे हैं, क्या इनका रेंट है, क्या इनकी जरूरियात है। तो खुद ही अगर अकलमंद होंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किधर से इनका गुजारा पूरा होता होगा। तो तुम उनको उनकी निशानियों से पहचानोगे। और नंबर फोर बात क्या है, नंबर थ्री बात क्या थी? ताफुफ से, ताफुफ यानी वो मांगते नहीं है किसी से। और नंबर टू क्या बात थी? कि वो जाहिल उसको गनी समझता है। नंबर फोर बात क्या है? ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो नहीं मांगते लोगों से इसरार करके, लिपट नहीं जाते किसी से, लिपट लिपट के नहीं लोगों से मांगते। यानी एक लोग होते हैं ना कि यानी वो किसी के पीछे ही पड़ जाते, तो वो ऐसे नहीं है, किसी के पीछे नहीं पड़ते। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें, एक तरफ ये भी है, ये एक यानी जिस जो देने वाला है उसको तो ये कहा गया ना तुम दो और तुम खर्च करो, मैं यहाँ पे ये भी पता चलता है कि मांगना जो है ना वो इस्लाम में कोई पसंदीदा चीज नहीं है। इसीलिए कहा गया ना ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से लिपट के मांगते नहीं है, वो किसी से सवाल नहीं करते, वो अपनी हालतें ऐसी नहीं बना लेते कि लोग आके उनके सामने दो चार रुपए फेंक के चले जाएं। तो खास तौर पे जो दीनदार तबका है ना उनके लिए बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है कि वो मांगे लोगों से। आजकल हमारा क्या मिजाज बन गया आपने देखा, हर तरफ चंदा मांगने वाले हम बन गए हैं, दीनी लोग जो है ना, चाहे किसी मस्जिद में चले जाओ, मदरसे में चले जाओ, कोई पढ़ाने वाले, एवरीवेयर बस डोनेशन दे दें हमें। लोग जो है ना यकीन करें बार दफा मस्जिद जाने से घबराते हैं, इस वजह से बस चले जाएंगे तो इनका तो काम ही है मांगना, रमजान में देख ले उसमें देख ले, मांगने को पसंद नहीं किया गया इस्लाम में। वो तो खैर अपनी जात के लिए नहीं मांगते, तो इदारे के लिए मांगते हैं, मगर हर वक्त एक मिजाज बना लेना कि लोगों की जान ही ना छोड़ना, उनके साथ लिपट जाना, अब आप देंगे नहीं तो हम आपको नमाज ही नहीं पढ़ाएंगे, अब बैठे रहे आप लोग भी ऐसे, लिपट लिपट के मांगना नहीं चाहिए। दीनदार बंदा जो होता है ना उसकी इज्जत उसके दीन की वजह से होती है, उसको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है आप नेकी में शरीक करें जरूर, मगर उनके सामने बेगर्स ना बन जाएं कि फकीर बन गए, बस लिपटे में उनसे चिमटे में उनसे, अब जान ही नहीं छोड़ रहा है, नहीं ये सही चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो मुझे जमानत देके कभी किसी से सवाल नहीं करेगा, तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। ये कितनी बड़ी बात है, तुम मुझे इस चीज की जमानत दो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, कभी किसी से सवाल ना करो। इसी तरह एक जा आता है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से, तो लेने वाला हाथ ना रखो अपना, अल्लाह ताला हमें हमेशा देने वाला हाथ दे, ऊपर वाला हाथ दे, अल्लाह ताला इससे बचाए नीचे वाले हाथ होने से। लेकिन बात वही होती है कि एक दफा इंसान की झिझक खुल जाती है ना फिर वो मांगने पर ही तुल जाता है, हर वक्त इधर से ही मांगना, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، یعنی اچھے بھلے بھی ہیں لیکن بس ایسے ہی مانگتے جا رہے ہیں، مانگنے کی عادت ہی پڑ گئی. وہ پتہ ہے کیا مانگ رہا ہے؟ آگ کے انگارے، چاہے وہ دین والا ہے چاہے نہیں دین والا، کوئی بھی ہے. تو فرمایا اب چاہے تو کم کر لے اور چاہے تو بڑھا لے. آگ کے انگارے تم اپنے لیے چاہو تو کم کر لو، چاہو بڑھا لو، یہ آگ کے انگارے ہیں بس. عرفہ کے دن ایک آدمی تھا لوگوں سے مانگ رہا تھا، حضرت علی نے دیکھا تو فرمایا آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، اور اس کو درے سے پیٹا. اسی طرح حجت الوداع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے، دو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے آپ سے صدقے کا مال مانگنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا ان کی طرف، پھر نگاہ نیچے کر لی، اور وہ لوگ جو دو لوگ آئے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر یاد رکھو صدقے کے مال میں مالدار اور طاقتور کا حصہ نہیں ہے. یعنی تم اچھے بھلے طاقتور ہو، صحت مند ہو، کام کر سکتے ہو، کام کرو. اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیقہ کوڑا بھی اونٹ سے گر جاتا تھا تو کبھی سوال نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے اٹھا کے دے دے. سوال کرنا اچھا نہیں ہے کہ انسان مانگتا رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے نا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. یعنی جیسے آپ نے اسکیلیٹن دیکھا کتنا خوفناک ہوتا ہے، ایسے وہ ہوگا. تو ایک اسی طرح آپ کو وہ مشہور حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک بندے نے آ کے سوال کیا تو آپ نے پوچھا اس سے کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو نیلام کرایا، کون ہے جو یہ چیزیں خریدتا؟ ایک شخص نے کہا میں ایک درہم میں لیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں دو میں لے لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم میں وہ دو چیزیں اس کی بیچ دی، ایک درہم اس کو دیا، فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پینا لے آؤ، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کے لے کر آؤ میرے پاس. جب وہ کلہاڑی خرید کے لایا تو آپ نے اس کے اوپر لکڑی کا دستہ خود تھونکا اور فرمایا جاؤ جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹو اور لا کے بیچو، اور 15 دن کے بعد آنا میرے پاس. 15 دن کے بعد وہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے جو اس نے کمائے ہوئے تھے. کچھ درہموں کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا خریدا، اور وہ اچھے حال میں ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرے لیے یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے سے تیرے چہرے پہ برے نشان ہوں. یعنی اس کے نشان قیامت کے دن اس کے چہرے پہ ہوں گے کہ یہ مانگنے والا تھا لوگوں سے. تو مانگنا کو پسندیدہ نہیں کیا گیا کہ لوگوں سے لپٹ جائیں، لوگوں سے مانگتے رہیں، فقیری کی حالت بنا کے رکھیں، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اس کو. اب پھر دیکھیں کیا پتا چلے ہمیں اس بات سے کہ سوال، ایک تو سوال کرنا نہیں، مانگنا نہیں. کسی کو آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ہم خود اس کے وہ بن جائیں سوالی، ٹھیک ہے؟ اور جب کسی سوال کیا جائے تو دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، جتنی استطاعت ہو دے دے. بس آپ دوسرے سوال کر ہی لیا نا تو اب آپ دے دیں. تو یہ ہمیں چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. دیکھیں اسلام کا مزاج یہ ہے، دینے والے کو کہا گیا تم اپنا ہاتھ کھول دو، تم اپنے ہاتھ سے دے دو، اور لینے والے کو کہا گیا کہ تم یہ نہیں ہے کہ بات بے بات سوال کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرو، نہیں. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اوپر خرچ کرو جو کہ دین میں اپنے آپ کو ایسا وقف کیے ہوں کہ ان کے پاس وقت نہ ہو کوئی چیز کمانے کا. آپ ان کی حالت زار دیکھیں، ان کا گھر بار دیکھیں، یا ان کا پہننا اوڑھنا یا کھانا پینا دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگے کہ یہ اچھے بھلے مالدار ہیں، لیکن آپ کئی چیزوں سے پہچان لیں گے کہ ان کا گزر کوئی اتنا مشکل، مطلب کوئی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اس انکم میں، اس میں کہاں سے ان کا خرچہ پورا ہوتا ہوگا. تو اس وقت پھر انسان جو ہے نا، ان کے کچھ چیزیں دیکھ کے، کچھ نشانیاں دیکھ کے پھر ان کی خود ہیلپ کرے. وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے رہیں، ٹھیک ہے؟ बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मिस्कीन वो नहीं है जो दर बदर जाते हैं, कहीं से बस एक खजूर मिल जाए, कहीं से दो लुकमे मिल जाए, कहीं से एक वक्त का खाना मिल गया, बल्कि वो भी मिस्कीन है जिसके पास इतना नहीं है जिससे वो बेपरवाह हो जाए, जिसको हम कहते हैं हैंड टू माउथ। और उसने अपनी हालत भी ऐसी नहीं बनाई जिससे हर शख्स की इसकी जरूरत का एहसास करे और कुछ एहसान करे, और ना ही वो सवाल के आदी है। तो उनको उनकी इस हालत से जान लेगा जो साहिब बसीरत होगा, जो अकलमंद होगा ना, वो पहचान लेगा कि नहीं ये बंदा है जो डिजर्विंग। अच्छा, हम तो चाहते हैं ना कि बिल्कुल कोई सड़क पे आ जाए ना, तब हमने जाके हेल्प करनी है, वरना तो हमने अपना हाथ खोलना ही नहीं। वैसे बाजार में बेशक हम कितनी फजूल खर्ची करते होंगे, लेकिन उसको देते वक्त हम इतनी ज्यादा वो उस खोज कुरेद कर लेंगे ना कि इसके घर में अगर ये चीज मैंने देख ली तो मैंने नहीं इसको देना। तो आप खुद देखे ना, जो मोमिन होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की दानाई से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन जो होता है वो पहचान लेता है। तो उनकी कोई निशानियां होंगी जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये वाकई डिजर्विंग है या नहीं। लेकिन ये नहीं है ना कि फिर इंसान इतना ज्यादा भी इसके चीज के अंदर मतलब ऐसे हो जाए कि इतना फिनिकी हो जाए कि बिल्कुल जो फटे पुराने कपड़ों के साथ आए बस उसको ही देखे। यहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ भी उनकी हालत नहीं होगी, उस बल्कि देखने वाला समझेगा शायद इसको अच्छे ही हाल है। वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को रात को और दिन को छुपा के और ऐलानिया, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके अजर उनके रब के पास है। अब ये देखें, इस आयत के अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया गया है खर्च करने पे, इसलिए कि रात दिन खर्च करना क्या होता है। आप जैसे कि किसी को कहते ना, तुमने तो दिन रात एक ही काम पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात को भी काम करे दिन को भी काम। उसका मतलब क्या है, हर वक्त यानी तुम तो एक ही काम करती रहती हो, ऐसा ही है ना। सिरन व अलानियतन, छुपा के भी और ऐलानिया तौर पे भी। अब जाहिर है या तो इंसान छुपा के देगा या ओपनली देगा, यही है ना। तो ये कौन लोग हैं जिनकी ये बात हो रही, यानी जो जिन्होंने काम ही ये पकड़ लिया कि वो खर्च करते रहते हैं, वो देते रहते हैं। खर्च बाजार में नहीं खर्च करना, मॉल में नहीं, अल्लाह के रास्ते में देते रहते हैं। रात दिन उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ, चाहे छुपा के खर्च करना हो चाहे ऐलानिया खर्च करना हो, इसलिए कि बाज जगह छुप सकता ही नहीं है जब, और फिर वो काम जो आप दिन रात करते हो तो फिर कैसे उसको छुपाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, वो एक हदीस है, अभी मेरे सामने नहीं है, कि उस दिन ना हलाक हो जाएंगे वो लोग जो, मैं अपने वर्ड्स में इसका मीनिंग बता रही हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मेरे सामने, तो कि वो लोग हलाक हो जाएंगे जो मालदार हैं, सिवाय उनके जो दाएं बाएं आगे पीछे खर्च करते जाएं, यानी इतना खर्च करें दाएं बाएं आगे पीछे, यानी हर वक्त खर्च करें, अदरवाइज हलाक हो जाएंगे वो जो मालदार लोग। माल का हिसाब बड़ा सख्त होना वहां पे, और ये पूछ होगी वहां पे, सेपरेट एक क्वेश्चन होगा इस चीज का, जिसका आंसर किए बगैर कोई हशर के मैदान से हिल नहीं सकेगा। वो एक क्वेश्चन क्या है कि माल कहाँ खर्च किया। तो क्या हम अपने मालों का हिसाब दे सकेंगे कि एक एक डॉलर एक एक पैनी हमने किधर खर्च किए। वो लोग बच जाएंगे जो सुबह शाम खर्च करते हैं, छुपे खुले खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उनको कोई खौफ भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा। खौफ किस चीज का होता है, आइंदा का खौफ होता है ना, फ्यूचर का। हमेशा इंसान को खौफ लगा रहता है, पता नहीं ये ना हो जाए ये ना हो जाए। और गम किस चीज का होता है, पास्ट का, अरे पास्ट में ऐसे क्यों मैंने कर दिया, वो क्यों हो गया। तो उनके ना फ्यूचर का कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा पास्ट में जो भी किए, इसलिए कि सदका करने से यहाँ पे क्या पता चलता है, खौफ और गम से निजात मिल जाती है। कितने सुकून में आ जाए ना इंसान के, जिसको ना खौफ हो तो ना गम हो, दुनिया में भी बरकत हो जाती है और आखरत में भी अजर मिलता है। तो इस ग्रुप में शामिल होने से हमें कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि तो आज हम सब चाहते हैं कि खौफ से पनाह मिल जाए, हमारे गम दूर हो जाए किसी तरह। अल्लाह ताला ने उसके लिए नुस्खा दे दिया, हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भूखे मोमिन को सैर होके खाना खिलाए, अल्लाह ताला उसे जन्नत के एक ऐसे दरवाजे से दाखिल करेगा जहां से सिर्फ ऐसे ही लोग जाएंगे जो ये काम करते होंगे। यानी जो जो लोग लोगों की भूख मिटाते थे ना, वो सारे इसी दरवाजे से जाएंगे। एक स्पेशल दरवाजा उन लोगों के लिए। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी मुसलमान को लिबास पहनाता है, वो उस वक्त तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है जब तक उस पर उसका एक टुकड़ा भी बाकी रहे। और एक और हदीस में एक धागा तक है, एक एक टुकड़ा भी उसका उसके जिस्म पे बाकी रहेगा ना, वो यूज करता रहेगा, यानी जब तक उस वक्त तक ये अल्लाह की हिफाजत में रहेगा जिसने उसको कपड़ा पहनाया। तो अगर ऐसा हम लोग करने लगे, सारे लोग अगर ऐसे हो जाए, बताएं कि दिन और रात खर्च करते हैं, तो भला कोई भूखा भूखा रहेगा? कोई प्यासा प्यासा रहेगा? प्यासों की प्यास मिट जाएगी, कोई तन नंगा नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की कपड़े की जरूरत को पूरा करता है, उस वक्त कपड़े की जरूरत के वक्त उसको कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत का सब्ज लिबास उसको पहनाएगा, और जो किसी मुसलमान की भूख होने के वक्त उसको खाना खिलाएगा, अल्लाह उसको जन्नत के फलों में से फल खिलाएगा। सुभान अल्लाह। अब आप बताएं कि इसके बाद फिर कौन भूखा प्यासा रहेगा? और फिर फरमाया, और जो किसी मुसलमान को प्यास के वक्त पानी पिलाएगा, तो अल्लाह ताला उसे रहीक मखतूम में से पिलाएगा, जन्नत की शराब है उसमें से पिलाएगा अल्लाह ताला। कैसी खुशकिस्मती है। तो बताएं माशरा कैसा हो जाए जहां पे सारे लोगों का काम यही हो, दिन रात खर्च करना, छुपे खुले खर्च करना, है ना, जहां पे लोगों की मुठ्ठियां कभी बंद ही ना होती। जब मुठ्ठियां बंद होने लगती है ना, तभी ये मोहताजियां होती हैं। एक बद्दू ने आके कहा था, या रसूलल्लाह मुझे ऐसा काम बता दे जो मुझे जन्नत में ले जाए। फरमाया, गुलाम आजाद करो, असीर यानी कैदी को रिहा करो, ऐसा ना करो, कर सकते हो तो भूखे को खाना खिलाओ और प्यासे को पानी पिलाओ। इतनी ज्यादा तरगीब है खर्च करने की, फिर भी हम क्यों नहीं खर्च करना चाहते? तंग हो जाते हैं ना, एक तो शैतान वसवसे डाल देता है, ऊपर से किसी को देने के ऊपर दिल बिल्कुल ही तंग हो जाता है। दिल को वसी करें, दिल को बड़ा करें, ये सोचा करें जो दे रहे हैं ना, ये ही मुझे वहां पे मिलेगा। तो मैं जैसा कपड़ा दूंगी वैसा मुझे वहां मिलेगा, जैसा जो मैंने जेवर वहां पे लेना है वो मैं यहाँ पे अल्लाह के अकाउंट में डिपॉजिट करा दूं, वो जेवर वहां मिल जाएगा। जो चीज भी यहाँ पे खर्च करूंगी, जैसे अब खाना मुझे वहां पे चाहिए, जन्नत का खाना चाहिए, मैं यहाँ पे लोगों को खाना खिलाऊं। मुझे जन्नत की शराब पीने का शौक है, तो हाँ मैं यहाँ पे लोगों को की प्यास को बुझाने का इंतजाम करूं, कोई कुआं खुदवा दूं, कोई ऐसा नल लगवा दूं लोग पानी पिया करें, यहाँ साफ पानी लोगों को मिले। मुझे वहां पे कपड़े चाहिए, जन्नत के ड्रेसेस चाहिए, मैं यहाँ पे किसी मुसलमान के कपड़े की जरूरत को पूरी कर दूं। ठीक है, तो ये खर्च करने के पर। अच्छा, अब हमने ये तीन आयात में क्या पढ़ा? खर्च करना। सबसे पहली आयत के अंदर क्या पढ़ा? खर्च करो, चाहे तुम्हें गैर मुस्लिम पे ही खर्च करना पड़े। और इसमें देखिए, एक बार दफा शैतान ये भी आता है, नहीं ये तो कोई जेन्युइन नहीं है, ये तो पता नहीं वहां जाके आप यहाँ से भेजते हैं, वो वहां पे बाजारों में बिक जाता है, लोगों तक तो पहुंचता नहीं है, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, और फलां वो तो इतना जरूरतमंद भी नहीं है। तो देखे, जो आप खर्च करेंगे ना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, खाली अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने लिए बेहतर, तुम्हें तो अजर मिल जाएगा, अल्लाह ताला युवफा इलैकुम, वो पूरा पूरा दे देगा तुम्हें, तुम्हें फिर किस चीज की परवाह। जैसे बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, दोनों किताबों में, कि एक शख्स ने इरादा किया कि आज रात मैं सदका दूंगा, वो लेके निकला चुपके से, यानी उसने खुफिया सदका करना चाहना, चुपके से एक औरत को दे आया। सुबह लोगों में बातें होने लगी, आज रात कोई शख्स एक बदकार औरत को कोई खैरात दिया है, उसने भी सुन लिया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर अपने जी में कहा आज रात मैं एक और सदका करूंगा, लेके चला, एक शख्स की मुट्ठी में रख के चला आया। उसको थोड़ी बेचारे को पता कि कौन है, बस उसने अल्लाह की खातिर देना तो उसने दे दिया। सुबह लोगों में चर्चा हो रहा था, आज रात एक मालदार को कोई सदका दे गया, उसने फिर अल्लाह की तारीफ बयान की, उसने फिर इरादा किया आज रात मैं फिर सदका करूंगा। तो फिर उसने रात को सदका किया, दिन को फिर लोगों में ये बात हो रही थी कि आज रात किसी ने एक चोर को सदका दे दिया। वो कहने लगा अल्लाह तेरी तारीफ है, जानिया औरत के दिए जाने पर भी, मालदार शख्स को दिए जाने पर भी, और चोर के दिए जाने पर भी, चोर को दिए जाने पर भी अल्लाह तेरी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा। तो ख्वाब में उसने क्या देखा, एक फरिश्ता आया और कह रहा तेरा तेरे तीनों सदके कबूल हो गए, शायद बदकार औरत माल पाके बदकारी से बाज आ जाए, शायद मालदार को इबरत हासिल हो और वो भी सदके की आदत डाले, वो उसको भी ख्याल आ जाए मैं भी किसी को दूं, शायद चोर माल पाके चोरी से बाज आ जाए। बार दफा चोर चोरी इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे या हमारे घर में कोई जरूरत है, हो सकता है वो उसको सदका मिल जाए वो चोरी से बाज आ जाए। सुभान अल्लाह, हमें कितनी प्यारी बात सिखाई गई। ये भी नहीं कि आप फेंकते फिरें जैसे पहले बात हुई थी, मुस्तहकीन को ढूंढें, अपने तौर पे कोशिश करें, लेकिन बार दफा अगर आपके जैसे बस में नहीं है, अब आगे जाके कोई किस तरह से निकल आता है, अब जैसे इसको पता ही नहीं चला ना, तो फिर अब ऐसे वक्त के अंदर आपकी तरफ से सदका कबूल हो गया। ठीक है। और जो दूसरी आयत है, ये जो हमने पढ़ी आयत नंबर 273, ये आयत खास तौर पे उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ना असहाबे सुफा थे, सुफा वाले जो अपने घरों को छोड़ के दीन का इल्म लेने के लिए घरों से निकले रहते हैं। अब वो कहाँ, देखिए यहाँ पे आके वो रहते थे, इतनी उनकी यानी हालत खराब होती थी ना, पहनने को कपड़ा होता था, एक ही चादर होती थी जो सारे जिस्म पे लपेट लेते थे, ना खाने को कुछ होता था, क्योंकि जाहिर है अगर वो कमाने के लिए निकल जाता तो फिर सीखते कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उनमें एक हजरत अबू हुरैरा भी हैं, पता है आपको, हालांकि वो बहुत बाद में मुसलमान हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा अहादीस, बहुत ज्यादा अहादीस उन्होंने नरेट की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो लोगों ने पूछा कि आप तो इतने बाद में मुसलमान हुए, आपने इतनी अहादीस रिवायत की है हजारों की तादाद में। तो फरमाया जब लोग जो है ना अपने कमाने और उसके अंदर लगे होते थे तो मैं बैठ के इल्म ले रहा होता, और उनकी भूख के वाकयात का भी आपको पता है कि कितनी भूख का आलम हो जाता था उनके ऊपर, बेहोश हो जाते थे गिर के भूख की वजह से। तो ऐसे लोगों पे खर्च करें, वो किसी से मांगते नहीं है, पता चल जाएगा उनके हालात से। वो बार दफा किसी सहाबी से किसी आयत का, किसी बात का, किसी कोई मसला ऐसा पूछ रहे थे, जो फरमाते थे मुझे पता होता था उस चीज का, लेकिन मैं इसलिए पूछता था कि शायद हो सकता है कि मुझे कुछ कुछ खाने पीने को ऑफर कर दे, कुछ दे दे, तो मसला जवाब दे के चले जाते थे। तो तारिफ हूँ भी सीमा हूँ, तुम उनकी अलामतों से उनको पहचान जाओगे कि इनकी हालत क्या है। तो जैसे ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक्फ किया है, अब मर्द हजरात को घर का भी तो चलाना होता है खर्चा, तो अब वो कैसे खर्च करते होंगे, इन्होंने तो दीन के लिए खुद को वक्फ किया है, तो फिर उन पे खर्च करें और दिन रात खर्च करें, खर्च करने की अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत डालें। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई अल्लाह जो कुछ अल्लाह की खुशी के लिए को तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसके बदले तुम्हारे दर्जात बढ़ाएगा, यहाँ तक कि जो तुम अपनी बीवी को खिलाओ पिलाओगे उसके बदले में भी। अगर इंसान ये सोच के अपनी बीवी को भी खिलाता है तो उसके ऊपर भी वो सवाब पाता है, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला के रास्ते में इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.